आप हैं SBS हिंदी के साथ। आज के मुख्य समाचार में, सिडनी के उपनगरीय इलाकों में इस साल दूसरी बार बाढ़ आने से हजारों घरों को कराया गया खाली। यूक्रेनी नियंत्रण में अंतिम शेष शहरों में से लीसीशंस के लिए तेज हुई लड़ाई, और बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में कई दिनों तक भारी बारिश में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों का संघर्ष जारी। अब समाचार विस्तार से। सिडनी के उपनगरीय इलाके में इस साल दूसरी बार बाढ़ आने के कारण हजारों घरों को खाली करा दिया गया है और दर्जनों लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश रात भर तेज रहेगी और कल निचले इलाकों में और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मार्की गार्डनर कैमडेर के निवासियों में से हैं जिन्हें सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया।
And we've seen it flood, but this is the worst I've seen it in my time here, and it's devastating. I really feel sorry for the businesses. It's the fourth time it's happened this year. And as I said, we spoke to somebody who said in an hour it's gone up 4 inches.
उधर बांग्लादेश और पूर्वोत्तर भारत में कई दिनों तक भारी बारिश के बाद अधिक पानी भर गया है, जिसकी वजह से कम भोजन और पीने के पानी की कमी के साथ फंसे 9.5 मिलियन से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए अधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से भारत के मणिपुर राज्य में कीचड़ फंसने से भुसलखान की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और बचाव दल अभी भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बाढ़ से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 7 मिलियन लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन कई लोगों को डर है कि यह केवल एक अस्थायी राहत है, क्योंकि मानसून के मौसम को 2/3 अरसा अभी बाकी है।
We were staying in our flooded home for 1 week. Now we're staying at a shelter, but there's no food. The water has receded a little, so I hope to go home soon.
यूक्रेन की खबरों में लीसीशंस के लिए लड़ाई और तेज होती जा रही है। ये देश के पूर्वी लुहांस्क प्रांत का आखिरी बचा हुआ शहर है, जो अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। रूस और यूक्रेन इस क्षेत्र को लेकर आपस में जूझ रहे हैं और दोनों पक्षों ने स्वामित्व का दावा किया है, लेकिन राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक सलाहकार का मानना है कि शहर कुछ ही दिनों में गिर सकता है। अपने संबोधन में बोलते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि पिछली पंक्ति के कई शहरों में आत्मसंतोष की भावना है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है।
Missiles. As of just this evening, there have already been 6 missile strikes, a total of 12 missiles. In Mykolaiv, in the Donetsk region, airstrikes have continued. Brutal hostilities continue along the entire front line. In Donbas, the epicenter, of course, in the cities of the Luhansk region, hostile activity is intensifying in the Kharkiv region. We managed to drive the occupying forces out of Ivanivka in the Kherson region, and we continue to put pressure in the south of our state.
उधर विक्टोरियन लेबर एमपी बेन कैरल ने अपनी पूर्व सहयोगी जेन गैरेट को श्रद्धांजलि दी है। 49 वर्ष की उम्र में जेन गैरेट की ब्रेस्ट कैंसर से मृत्यु हो गई है। सुश्री गैरेट ने 2010 में विक्टोरियन संसद में एक सांसद के रूप में कार्य किया और वे ब्रंसविक और पूर्वी विक्टोरिया की सदस्य और आपातकालीन सेवा मंत्री भी रह चुकी हैं। शनिवार शाम को उनकी मृत्यु की घोषणा की गई और उनको राजकीय अंतिम संस्कार देने का प्रस्ताव किया जा रहा है। परिवहन मंत्री बेन कैरल का कहना है कि लेबर परिवार शोक में है।
This is a devastating loss, not only for the labor movement, but her family as well. 3 young children that she was a wonderful mother to, a husband, and she also was a daughter, and she's loved and cherished by all of her community. And let's also remember too, Jane has been a wonderful servant to the labor movement.
पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एश बार्टी को मेलबर्न में नेडॉक अवार्ड्स में इस वर्ष के स्वदेशी व्यक्ति का खिताब दिया गया है। पिछले 12 महीनों में एशबाटी ने विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों जीते और फिर केवल 26 साल की उम्र में खेल से संन्यास ले लिया। वह इस समय अमेरिका में हैं। उनके पिता रॉबर्ट ने उनकी ओर से पुरस्कार स्वीकार किया और दर्शकों को बताया कि पिछले वर्ष के दौरान उनकी बेटी की स्वदेशी विरासत उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है। पूर्व रिकॉर्ड किए गए स्वीकृति अभाषण में बाटी ने कहा कि वह अपने समुदाय में योगदान देना जारी रखना चाहती हैं।
It's an incredible night to celebrate our culture and the community and so many contributions from so many people. I'm so humbled and privileged to have won the NAIDOC Person of the Year. I can't wait to continue my contribution to kids' education and to help them fulfill their dreams.
NAIDOC Awards, NAIDOC Week, यानी कि 3 जुलाई से 10 जुलाई में शुरू होते हैं। NAIDOC Week में स्वदेशी संस्कृति, इतिहास और उपलब्धि का उत्सव मनाया जाता है। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज भी 68 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 53 रुपये और 81 पैसे हो गई है। और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में कल सोमवार को धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम 20 डिग्री तक जाएगा। एडलेड में कल आंशिक बादल रहने की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहेगा और अधिकतम तापमान 15 तक जाएगा। मेलबर्न में भी आंशिक बादल रहेंगे, यहां का न्यूनतम तापमान भी 7 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। कैनबरा में बरसात की संभावना, वहां का न्यूनतम तापमान 6 और अधिकतम तापमान 13 डिग्री। सिडनी में भी तेज हवा और बारिश के आसार और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 17 डिग्री। डार्विन में ज्यादातर धूप खिली रहेगी, वहां का न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 28 डिग्री तक जाएगा। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में आंधी के साथ छिटपुट बारिश की संभावना और वहां का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान होगा 36 डिग्री। मौसम की जानकारी के साथ ही आज के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify या फिर जहाँ आप podcast सुनते हैं वहाँ हम हैं।